नमस्कार भारत, आज 24 जुलाई दिन मंगलवार, सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के रवांडा दौरे पर।
इस दौरे में सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो तो जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है।
कथित राजनीतिक हत्याओं के विरोध में वामपंथी दलों की संसद के बाहर प्रदर्शन की तैयारी।
त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों में पूरी तरह से जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है। विपक्ष को हमला कर करके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ संस्थाओं को स्वामी अग्निवेश से आखिर क्यों नाराजगी है।
मैं हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं कहता, मैं सबके खिलाफ कहता हूँ। तब मुझे बहुत खुशी हुई कि आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत वेदों को मान रहा, तो फिर क्यों ना हम मिल करके कार्यक्रम करें।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 अफ्रीकी देशों के दौरे के पहले पड़ाव में रवांडा पहुंचे हैं। इसके बाद वो युगांडा और दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, जहां वो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला रवांडा दौरा है और बीते 20 साल में कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार युगांडा जा रहा है। मोदी युगांडा की संसद में संबोधन भी करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप 6 पूर्व खुफिया अधिकारियों की सुरक्षा मंजूरियों को वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। एक प्रेस वार्ता में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा हकाबी सैंडर्स ने इन 6 लोगों पर राष्ट्रपति ट्रंप के रूसी सरकार से रिश्तों पर आधारहीन दावे करने के आरोप लगाए हैं। इन 6 लोगों में CIA के पूर्व निदेशक जॉन ब्रेनन और FBI के पूर्व निदेशक जेम्स कॉमी शामिल हैं। इनके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रही सुसान राइस और पूर्व खुफिया निदेशक जेम्स क्लैपर भी शामिल हैं। जॉन ब्रेनन ने बीते सप्ताह हेलसिंकी में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात को देशद्रोह के बराबर बताया था। सुरक्षा मंजूरियां वापस लिए जाने के बाद ये पूर्व अधिकारी गुप्त दस्तावेज नहीं देख सकेंगे और उन्हें सुरक्षा जांचों से गुजरना होगा। इस आशय के बारे में जानकारी देते हुए सारा हकाबी सैंडर्स ने पत्रकारों से कहा,
The president is exploring the mechanisms to remove security clearance because they've politicized and in some cases
राष्ट्रपति सुरक्षा मंजूरियों को वापस लेने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी सार्वजनिक सेवा और सुरक्षा मंजूरियों का कई मामलों में आर्थिक फायदा उठाया है और इस पर राजनीति भी की है। उन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ रूस के साथ अनुचित संबंध रखने और प्रभावित होने के आरोप भी लगाए हैं। और एक तथ्य ये भी है कि सुरक्षा मंजूरियों वाले ये लोग आधारहीन आरोप लगा रहे हैं, जिससे इन बेबुनियाद आरोपों को स्वीकार्यता मिल रही है। ग्रीस से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक राजधानी एथेंस के पास जंगलों में लगी आग से मरने वालों की संख्या कम से कम 20 हो गई है। एक प्रवक्ता के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें राजधानी के पूर्व में स्थित तटीय क्षेत्र माती में हुई हैं। इस आग से निपटने के लिए ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मांगा है। आग की वजह से यातायात सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और रेल मार्ग बंद कर दिए गए हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने कहा है कि आग बुझाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये आर्टिका क्षेत्र के लिए मुश्किल रात है। इस समय अग्निशमन दल के 600 से ज्यादा पुरुष और महिला कर्मी और 300 से ज्यादा वाहन आग बुझाने में जुटे हुए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने ट्विटर पर ट्रंप को ताना मारा है। ट्विटर पर राष्ट्रपति ट्रंप के स्टाइल की नकल करते हुए जावेद जरीफ ने मोटे अक्षरों में लिखा कि मैं प्रभावित नहीं हूं। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए लिखा था कि यदि ईरान ने अमरीका को धमकाया तो उसे ऐसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा जिनका सामना इतिहास में बहुत कम लोगों ने किया है। ट्रंप के ट्वीट के बाद एक भाषण में ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि ईरान के साथ यदि कोई युद्ध हुआ तो ये सभी युद्धों से विनाशक होगा। इसी साल मई में अमेरिका के ईरान के साथ परमाणु समझौते से बाहर होने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। अमेरिका ईरान पर फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने जा रहा है। बीबीसी समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक के जरिए भी सुन सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। आज कार्यक्रम की शुरुआत अफ्रीकी देश रवांडा से। रवांडा की राजधानी किगाली में पारंपरिक लोक नृत्य और वाद्य यंत्रों के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ इस तरह से स्वागत किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रवांडा दौरे पर हैं, जहां दोनों देशों के बीच कुछ समझौतों पर दस्तखत हुए हैं।
$200 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट और ट्रेनिंग के विषय पर समझौते किए हैं। शीघ्र ही रवांडा में हाई कमीशन खोलने वाले हैं।
ये थे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारत के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है। BBC संवाददाता मोहम्मद शाहिद ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से यही सवाल पूछा।
इस दौरे में सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो तो जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, पर उस शिखर सम्मेलन के दौरान एक ब्रिक्स प्लस के आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी को अफ्रीका के 9 बड़े देशों के नेताओं से बात करने का मौका मिलेगा। तो ये जो उनकी अफ्रीका पॉलिसी को ईस्ट अफ्रीका लिटोरल से बढ़ाकर बाकी पूरे उपद्वीप में जुड़ने की कोशिश जो है उनकी नीति में, उसमें बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। और इसके साथ रवांडा अब इस वक्त आप देखें कि अफ्रीकन यूनियन का चेयर है और हाल ही में वहाँ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनकी राजधानी कगाली में हुई थी। और उसके अलावा वो जो अफ्रीकन यूनियन की 8 रीजनल कम्युनिटीज हैं, उसमें भी ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का जो अध्यक्ष है वो रवांडा है इस वक्त। तो रवांडा छोटा देश होने के बावजूद इस वक्त अफ्रीका की जो संस्थान है, जो बहुराष्ट्रीय संस्थान है वहाँ के, उसमें उसका काफी अहम इस वक्त रोल है। 60,000 भारतीयों को एक्सपेल किया गया इदी अमीन के समय के दौरान, वो एक खराब वक्त था। पर युगांडा के साथ हमारा व्यापार काफी बड़ा है अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर, तो इसलिए दोनों देशों की यात्रा से एक माहौल बनता है।
दो देशों का जब दौरा होता है तो कुछ कुछ व्यापारिक समझौते होते हैं, उसके लिहाज से आप किसको ज्यादा फायदे में देखते हैं या भारत को क्या हासिल हो सकता है?
अफ्रीका के देश तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उनका उन्नतिशील होना जो है वो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि हम वहाँ निवेश करते हैं। तो एक तो अफ्रीका अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 55 देशों का एक कॉन्टिनेंट है और बहुत सी ऐसी बहुराष्ट्रीय समीकरणों में उसका फायदा भारत की विदेश नीति को मिलता है। और उसके साथ साथ हमें निवेश करने की, आप जिसको अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, उसकी जो डिमांड है वो अफ्रीका में है और भारत वहाँ काफी अच्छा योगदान कर सकता है उनकी उन्नति में, उनके विकास में। और जाहिर है कि वहाँ से कुछ खनिज पदार्थ या यूरेनियम हो या उसके अलावा गैस हो, ऑयल हो, इस तरह के जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं वो भी भारत की अपनी उन्नति और विकास के लिए भी जरूरी हैं।
200 गायें जो रवांडा को देने की एक बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उस पर क्या कहते हैं आप?
ये तो एक कार्यक्रम है वहाँ के राष्ट्रपति ने 2006 में शुरू किया था कि हर गरीब परिवार को कम से कम एक गाय दी जाए, ताकि न केवल उससे गरीबी से सुलझने की उनको उम्मीद बनेगी, पर उसके साथ साथ जो बच्चों में मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम वहाँ अफ्रीका में थी उसको भी सुधारने की एक कोशिश है इसमें। और करीब 1,30,000 गायें इस तरह परिवारों को दी जा चुकी हैं। गायें वही की हैं, भारत उसमें अपना योगदान देने की एक कोशिश कर रहा है और वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। उससे उसके काफी अच्छी रिपोर्ट्स हैं, नतीजे उसके अच्छे आए हैं कि वहाँ के बच्चों में मेल न्यूट्रिशन जो बहुत बड़ी समस्या थी उसमें सुधार हुआ है।
ये थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवांडा दौरे का विश्लेषण कर रहे थे। चलेंगे पाकिस्तान, इस्लामाबाद राजधानी, BBC संवाददाता शुमैला जाफरी के पास, लेकिन पहले रुख कर रहे हैं भारत का कार्यक्रम में आगे।
मेरे से नाराजगी यह है कि एक तो मैं बहुत ईमानदारी से सामाजिक न्याय का पक्षधर हूँ और ये समाज खड़ा है सामाजिक अन्याय के ऊपर, आर्थिक अन्याय के ऊपर। जब मैं बंधुआ मजदूरों का सवाल उठाता हूँ तब मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश से बातचीत सुनेंगे आप कुछ ही देर के बाद, लेकिन पहले बात वामपंथी दलों के संसद के बाहर आज होने वाले प्रदर्शन की। वामपंथी दल पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में अपने कार्यकर्ताओं की कथित राजनीतिक हत्या के खिलाफ आज संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कमलेश ने सीपीएम नेता सुभाषनी अली सहगल से बात की।
दो राज्यों में त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों में पूरी तरह से जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है। बीजेपी की सरकार जो त्रिपुरा में बनी है और तृणमूल की सरकार जो पश्चिम बंगाल में है, वो दोनों ही पूरी तरह से विपक्ष को एक तरह से हमला कर करके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो प्रमुख विपक्ष है सीपीआईएम। अभी जो पंचायत का चुनाव हुआ बंगाल में, उसमें 33% सीटों पर तो कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया, उनको खड़ा करने नहीं दिया गया, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। ये वहाँ हालत है और लोगों को जिस तरह से मारा जा रहा है, जिस लोगों की हत्याएं हो रही हैं, और यही हालत अब त्रिपुरा के अंदर है। जब से वहाँ यही नई सरकार बनी है तो वहाँ भी जो सीपीआईएम के कार्यकर्ता हैं, जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और किसी तरीके का प्रतिरोध करने की वहाँ अनुमति नहीं दी जा रही। इसके खिलाफ तमाम जो वामपंथी नेता हैं, उनमें हमारे केरला के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन, वो भी आएंगे और भी तमाम लोग आएंगे और वो प्रदर्शन होगा।
सत्र चल रहा है सिर्फ एक यही विषय क्यों? जैसे मॉब लिंचिंग को लेकर भी काफी कुछ चल रहा है, तो और कोई मसला क्यों नहीं?
नहीं, वो इसलिए क्योंकि इस सवाल पर कोई बोल ही नहीं रहा है, इस सवाल को कोई उठा ही नहीं रहा है। बाकी जितने मुद्दे उन पर तो हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे तमाम समर्थक, तो चाहे लिंचिंग की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे राफेल की बात हो, हम लोग तो इन सारे मुद्दों पर बोल ही रहे हैं। जिस तरह से जानलेवा हमला हो रहा है, इस पर लोगों को कुछ सोचना चाहिए और कुछ हस्तक्षेप होना चाहिए। जहाँ तक केरला की बात है, आप केरला में पहले आंकड़े पुरा करके देखिए। हमारी वहाँ सरकार है, हम सत्ता पक्ष है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे लोगों की हत्या हुई है पिछले 3 साल में।
लेफ्ट पार्टीज के अलावा और कोई दल, जैसे अभी बात हो रही है कि बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन की बात है, विपक्ष के एकजुट होने की बात है।
ये महागठबंधन वाला सवाल नहीं है, ये तो एक स्पेसिफिक सवाल है। तो इस पे कुछ लोग आएंगे, कुछ व्यक्ति आएंगे जो दूसरे दलों के नेता हैं, उनके एमपीज हैं, कहा गया है सबसे आने के लिए, लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ कि कौन आएगा क्यों नहीं।
महागठबंधन को लेकर सीपीआई की क्या नीति?
महागठबंधन के बारे में अभी कुछ हम लोग नहीं कहना चाहेंगे। अभी तो बहुत सी बातें हो रही हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अभी कोई चीज को कहीं तय नहीं हुई है।
ये थी सीपीएम नेता सुभाषनी अली सहगल। चलते हैं अब पाकिस्तान। संपर्क हमारा कायम हो गया है इस्लामाबाद में। शुमैला जाफरी, बीबीसी संवाददाता, हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में 25 जुलाई को संसदीय चुनाव होने वाले हैं और कल चुनाव प्रचार थम चुका है। अब हम ये जानना चाहेंगे शुमैला से कि कल जो वोटिंग होने वाली है पाकिस्तान में, उसके लिए किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं, ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहाँ हिंसा का ज़्यादा अंदेशा रहता है।
जी, इंतजाम सिक्योरिटी के हम पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ज़्यादा किए गए हैं। इस बार तकरीबन 370,000 फौजी जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करेंगे। इसके अंदर वो इलाके भी शामिल हैं जहाँ ज़्यादा हिंसा होती रही है, जहाँ भी रिसेंटली कुछ अटैक्स हुए हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में, जहाँ एक बहुत बड़ा हमला हुआ मस्तूम में जिसमें 150 के करीब लोग मारे गए थे। तो ये इलाके और वो इलाके जो कि ट्राइबल एरियाज़ हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे हैं, वहाँ पे खास तौर पे ज़्यादा हमेशा सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं। इन इलाकों के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत, चूँकि पिछले इलेक्शन के बाद ट्रांसपेरेंसी और रिगिंग के एलिगेशंस बहुत सारे लगते रहे हैं, तो वो भी एक कंसर्न था। इस वजह से भी इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, इलेक्शन बेहतर से बेहतर हो सके, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर इंतजाम ज़्यादा बेहतर हों, जो अमला था, जो स्टाफ होगा पोलिंग का, उनकी बहुत देर ट्रेनिंग्स होती रही हैं, नई जो है वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई हैं।
शुमैला, ये बताइए,
बार जो है वो रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। जी
शुमैला, ये बताइए कि भारत में यहाँ पर चुनाव जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के जरिए होते हैं, क्या वहाँ पाकिस्तान में भी इसी तरह चुनाव हो रहे हैं या वही पुराना वाला तरीका है?
नहीं, अभी तो पाकिस्तान में पुराने तरीके से मैन्युअली ही वोट डाले जाएंगे, जहाँ पे लोग जाएंगे और उनको कागज दिया जाएगा, अंगूठे पे निशान लगेगा और फिर वो बैलेट बॉक्सेस के अंदर अपने जो है वो वोट या जो पर्ची है उसको डाल देंगे। लेकिन कुछ चीजें जो है उनको इम्प्रूव किया गया है, जैसे रिजल्ट के लिए जो पोलिंग स्टेशन के डिफरेंट रिजल्ट हैं उसके लिए एक ऐप बना दी गई है और जो वहाँ पे ऑफिसर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको अपडेट करते जाएंगे, तो जिससे रिजल्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा बेहतर और शायद ज्यादा जल्दी सामने आ सकेगा, खासतौर पे उन पोलिंग स्टेशन से जो दूर दराज के इलाकों में होते हैं। लेकिन जो अब वोटिंग का सिस्टम है वो अभी भी मैन्युअली ही पाकिस्तान में हो रही है।
बहुत शुक्रिया, ये थी बीबीसी संवाददाता इस्लामाबाद से शुमाइला जाफरी, जो बता रही थी कल पाकिस्तान में आम चुनाव होंगे और पारंपरिक तरीके से पर्ची के जरिए पाकिस्तान के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर भारत का रुख कर रहे हैं। बिहार में एक और नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार और फिर उसके साथ साथ उसके भाई की भी हत्या किए जाने का एक मामला सामने आया है। इस खबर पर और जानकारी के साथ मनीष शांडिल।
बिहार का मुजफ्फरपुर शहर अपने यहाँ के एक सरकारी बालिका गृह में हुए लड़कियों के यौन शोषण से जुड़े मामले के कारण अभी लगातार चर्चा में है। इसी जिले में रविवार को एक 10 साल की नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, नाबालिग लड़की के साथ साथ उसके छोटे भाई की भी हत्या हुई है। परिजनों का आरोप है कि उनके ही गांव के एक शख्स और पड़ोस के गांव के दो लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है।
कहा है कि मार देंगे तुम्हारा कोनो घर में खून कर देंगे, तो हमारा दो बच्चा गया है, उठा के हमारा बच्चा के रेप कर दिया है, छुर छुरा भोंक दिया। कल सुबह में हमारा बच्चा घर के बगल में पड़ती था, वहाँ खेल रहा था, उसी पर नदी है, बच्ची नहा के हमारा उसी पर बैठ रहा था, उस लोग आया मुंह बांध के उठा लिया।
बिहार में हाल के दिनों में बलात्कार और यौन शोषण की कई घटनाएं लगातार सामने आई हैं। मैंने पटना स्थित एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर डीएम दिवाकर से पूछा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है।
आवश्यक है कि समाज से सचेत लोग इसमें आगे आएं और सामाजिक पहरेदारी बढ़ाई जाए। मूलतः सरकार जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था में जो रिस्पेक्टिव ऑफ पावर कैटेगरी जो इसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
इसमें मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाने में 3 लोगों के खिलाफ हत्या और बलात्कार की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है, लेकिन उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। मनीष शांडिल्य, BBC, सरैया, मुजफ्फरपुर।
और इधर दिल्ली स्टूडियो में दिलनवाज पाशा एकदम तैयार हैं, कई अखबार उनके हाथ में हैं। बताएं दिलनवाज, क्या कह रहे हैं आज के अखबार?
संदीप, आज के अखबार देखकर डर सा लग रहा है। अखबारों में भीड़ की हिंसा हावी है। भीड़ की हिंसा पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने बनाई समितियां, जनसत्ता। मॉब लिंचिंग पर उबाल, पंजाब केसरी का शीर्षक है। और नवभारत टाइम्स कह रहा है कयामत ढाती भीड़ पर, कहीं अकेली ना पड़े सरकार,
और
कानून बने।
एक सुर्खी मैं भी देख रहा हूं दैनिक जागरण में, संसद से सुप्रीम कोर्ट तक गूंजा अलवर कांड।
जी संदीप, भीड़ की हिंसा भारत में गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है और आज के अखबार यही बता रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर है, मध्य प्रदेश में एक महिला की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। और ये
कहाँ का मामला है ये?
जी वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये भोंस नाम का गांव है, मोरवा थाना क्षेत्र है और सिंगरौली ज़िला, जहाँ व्हाट्सएप पर ये अफवाह फैली कि एक कथित बच्चा चोर यहाँ सकिर रहे हैं और जिस महिला को पीट पीट कर मारा गया वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है। इसके अलावा पंजाब केसरी ने एक इलस्ट्रेशन छापा है जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं, और राहुल गांधी का वो बयान भी, पीएम मोदी के न्यू इंडिया में मानवता की जगह नफरत, तो भाजपा ने पलटवार करके कहा है कि नफरत पहचानो नफरत का सौदागर कौन। तो एक और जहां भीड़ की हिंसा पर चिंता है, वहीं इस पर काफ़ी राजनीति भी हो रही है। द हिंदू अखबार में उस परिवार की तस्वीर है जिसके जो व्यक्ति की मौत हुई थी अलवर हिंसा में, और कई बच्चों के साथ जो उनकी पत्नी हैं वो बदहवास लेटी हैं। ये तस्वीर BBC हिंदी ने भी अपने पन्ने पर प्रकाशित की थी। और अब जिक्र करेंगे स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले का। इंडियन एक्सप्रेस आज का बता रहा है कि उन पर हमला करने वालों में BJP, RSS और बजरंग दल से जुड़े लोग शामिल थे।
तो जैसा कि दिलनवाज पाशा अखबारों की सुर्खियों के हवाले से बता रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ काम करने वाले स्वामी अग्निवेश के साथ हाल में झारखंड के पाकुड़ में मारपीट की गई थी। इस घटना को अंजाम देने का आरोप भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा पर लगा था। हिंदुत्ववादी संस्थाएं उन पर यानी स्वामी अग्निवेश पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाती रही हैं। बीबीसी हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी ने स्वामी अग्निवेश से साक्षात्कार किया और उनसे पूछा कि हिंदुत्ववादी संस्थाओं की उनसे आखिर क्या नाराजगी है।
मेरे से नाराजगी यह है कि एक तो मैं बहुत ईमानदारी से सामाजिक न्याय का पक्षधर हूँ और ये समाज खड़ा है सामाजिक अन्याय के ऊपर, आर्थिक अन्याय के ऊपर। जब मैं बंधुआ मजदूरों का सवाल उठाता हूँ तब मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं मेरे ही राज्य के वो मुख्यमंत्री जिनकी कैबिनेट में मैं शिक्षा मंत्री था। इसके बाद कितनी कितनी बार मुझे आक्रमण हुए लेकिन इस तरह सीधे सीधे मेरे ऊपर हमला नहीं हुआ। आक्रमण की तैयारी की गई मुझे मारने के इरादे से, लेकिन मैं थोड़ी देर से पहुंचा या कोई और घटना चक्र हो गई। तो इस तरीके से मैं ये देख रहा हूं कि जो बदलने नहीं देना चाहते जो समाज को और खास करके गरीब तबकों को उनका न्याय नहीं मिले इसके लिए वो लोग आमादा हैं।
आप एक बहुत सजग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिनकी बहुत साख भी है, क्रेडिबिलिटी भी है, लेकिन झारखंड के एक मंत्री जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका ये कहना है कि स्वामी अग्निवेश ने खुद पर यह हमला करवाया ताकि उनको पब्लिसिटी मिले।
झारखंड के मंत्री सीपी सिंह जी जो बोल रहे हैं उस पर कोई भी यकीन कैसे करेगा, मुझे नहीं लग रहा। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है कि मैं स्वयं अपने ऊपर हमला प्रायोजित करवाऊंगा जिसमें मेरे जान जाने का भी खतरा हो, मैं क्यों करूंगा। इस तरह की पब्लिसिटी यदि मिलती भी है, मेरे मरने के बाद मिलेगी, तो उसका क्या फायदा होगा।
हिंदुत्ववादी जो संगठन है वो खास तौर पर कह रहे हैं कि आप हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करते हैं। एक वीडियो चल रहा है जिसमें आपने अमरनाथ में जो शिवलिंग है, बर्फानी बाबा का शिवलिंग है, उसके बारे में कहा है कि ये तो साइंटिफिक एक फेनोमेनन है, इसको भगवान से क्यों जोड़ के देखा जाता है।
मैं क्यों कहता हूँ इन सारी बातों को, मुझे मेरे जीवन में सबसे अधिक प्रेरणा किसी व्यक्ति से मिली, वो महर्षि दयानंद से मिली। उससे पहले मैं स्वयं अंधविश्वासी, जड़ पूजक, पत्थर पूजक, सारी जातिवाद मेरे अंदर था। सारी जो गलत चीज़ें होती हैं एक समाज में उनको मैं पालन करता था धर्म समझ करके। लेकिन जब मैं कलकत्ते गया पढ़ने 17 साल की उम्र में और वहाँ मुझे आर्य समाज के प्रति कुछ पढ़ने को लिखने को देखने को मिला तो मेरा जीवन बड़ी तेज़ी से बदलता गया। और फिर मैंने अपने जीवन का संकल्प लिया कि वेदों की तरफ लौटने का जो आह्वान महर्षि दयानंद ने किया है वो हमारी संस्कृति का, मानव संस्कृति का मूल है।
लेकिन जब आप ये कहते हैं तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो भी बताइए कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के खिलाफ क्यों थे और क्या उनका तब हिंदू सनातन धर्मियों ने विरोध किया था।
यदि किसी ने सबसे ज्यादा विरोध किया, वो हालांकि मुसलमानों का भी विरोध करते इस्लाम के और ईसाइयों का भी करते, बौद्धों का, जैनियों का, सबका, उनका अमर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसके आप 11वां, 12वां, 13वां, 14वां समुल्लास पढ़ेंगे तो उन्होंने किसी को भी बख्शा नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा आलोचना की उस धर्म की जिसमें वो स्वयं पैदा हुए, जो उनके पिताश्री का धर्म था, तो वहाँ से शुरू करके वो फिर बाकियों को भी कहते हैं धर्म के नाम पर रूढ़िवाद, अंधविश्वास।
एक तरह से जो हिंदुत्ववादी संगठन है बहुत मजबूत स्थिति में है, उस वक्त आप ऐसी बात कहने की आज़ादी महसूस करते हैं या आपको लगता है कि कही जानी चाहिए ये बातें जिससे हिंदुओं को लगे कि ये तो हमारे खिलाफ बात कर रहा है।
मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं कहता, मैं सबके खिलाफ कहता हूँ जहाँ तक उनके गलत परंपराओं का या उनके रीति नीति का सवाल है। महर्षि दयानंद पर आप देखेंगे उनके जीवन काल में 17 बार आक्रमण हुए उनको जान से मारने की, और 17 के 17 जो इन लोगों ने किया वो हिंदू समाज की पृष्ठभूमि से।
क्या आपको इस बात का एहसास है कि जो काम आप कर रहे हैं, अपने तई तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन आपकी छवि ऐसी भी बन गई है कि कहीं एक फिक्सर है ये आदमी, मिडिलमैन है, अगर दो पक्ष लड़ रहे हों बीच में आएगा ये आदमी और दोनों को साथ ले आएगा और अपना फायदा देखेगा। ऐसी आलोचना आपकी सोशल मीडिया में हुई है, पहले भी हुई है, आप क्या इस बात से वाकिफ हैं कि आपकी ऐसी छवि भी बनी है?
देखिए, सोशल मीडिया में कई कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बिल्कुल ही उल्टी हो रही हैं और सब लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं 24/7, उनका और कोई धंधा नहीं है, तो जहाँ जहाँ भी कैरेक्टर एसेसिनेशन का उनको जरा सा भी कुछ बहाना मिल जाए तो उसमें जुट जाते हैं। मुझे तो केवल इतना कहना, मैं एक इंसान हूँ, गलती किससे नहीं होगी, और मैं भी एक साधारण इंसान हूँ। केवल सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान होने का दावा नहीं करता, लेकिन मैं कहता जिसको भी कुछ मतभेद विरोध हो, आओ मेरे साथ बैठो, मुझे बुला लो, मैं आपके घर आऊंगा, आपके पास आऊंगा, हम बातचीत करें, संवाद करें, शास्त्रार्थ करें।
जब आप ये बात कहते हैं तभी जो भारतीय जनता पार्टी है या विश्व हिंदू परिषद जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो आपको माओवादी, आपको नक्सलवादी कहते हैं।
मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कभी भी किसी भी माओवादी का हो चाहे किसी का, हिंसा का जरा भी मैं पक्षधर नहीं हूँ। केवल और केवल डायलॉग, बोली, बातचीत, संवाद।
जब बोली, संवाद, डायलॉग ही रास्ता है और हिंसा रास्ता नहीं है, आप पर जो झारखंड में हमला हुआ इसके बाद क्या आप कोई पहल करेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत से आप संपर्क करें या उनके दूसरे नेताओं से संपर्क करें?
जी, मैं जरूर करना चाहूँगा। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा यदि इस प्रकार का मौका वो मुझे दें। मैं नागपुर जाने के लिए तैयार हूँ, या वो दिल्ली आते हों तो। उन्होंने पिछले दिनों अशोक सिंघल जी की याद में एक सभा में यहीं झंडेवाला में वेदों के ऊपर बड़े अच्छे बयान दिए, तब मुझे बहुत खुशी हुई कि RSS का प्रमुख मोहन भागवत वेदों को मान रहा, हम आर्य समाज के लोग वेदों को ही मानते हैं, तो फिर क्यों ना हम मिल करके कार्यक्रम करें।
तो आप RSS के साथ सहयोग करके कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं?
बिल्कुल, हम तो सबके साथ सहयोग करेंगे।
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश से बात कर रहे थे राजेश जोशी। और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारतीय कप्तान सुनील छेत्री को ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के साल 2017 के प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। हाल ही में वो बाइचुंग भूटिया के बाद 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले केवल दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे। सुनील छेत्री भारत और बैंगलोर FC के स्टार स्ट्राइकर हैं। जहां छेत्री को साल 2017 के पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, तो वहीं कमला देवी को महिला वर्ग में इसी इनाम के लिए चुना गया है। हाल ही में 4 देशों के इंटरनेशनल कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा अनिरुद्ध थापा को इन पुरस्कारों में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। और वहीं रंगना हेरात के दूसरी पारी में 6 विकेट की बदौलत श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में कल 199 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली। 2006 के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका की ये पहली टेस्ट सीरीज जीत है। जीत के लिए 490 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम दूसरी पारी में 290 रन पर आउट हो गई। श्रीलंका ने 12 साल पहले दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट श्रृंखला में 2-0 से हराया था, जिसके बाद उसने पहली बार टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। श्रीलंका ने पहली पारी में 338 जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 124 रन बनाए थे। पहली पारी में श्रीलंका के स्पिनर अकीला धनंजय ने 5 विकेट लिए। श्रीलंका ने दूसरी पारी 5 विकेट पर 275 रन पर घोषित की थी। और वहीं लंदन में चल रहे महिला हॉकी विश्व कप में अपना पहला मुकाबला मेजबान टीम से ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय टीम की अगली चुनौती आयरलैंड है। पूल बी की टीम भारत से इस टूर्नामेंट में कितनी उम्मीदें हैं, बता रहे हैं टीम के पूर्व कोच MK कौशिक।
देखिए, हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड बेटर स्टैंडिंग की टीम है और उससे ड्रॉ करने के बाद सबसे हम लोग भी जागे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम कभी कभी अपना पूरा क्षमता से गेम नहीं खेल पाते हैं जैसा मैं सोचता हूँ में खेला है। अगर ऐसा गेम खेलेंगे तो हम अवश्य ही टीम को पूल से निकल के हम जाएंगे ऊपर, लेकिन मेरा मानना है कि हमें हर मैच को मैच टू मैच देना होगा और स्पेशली डिफेंस को इस तरह से आउट किया है और भी बारीकी पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
विश्व रैंकिंग में 10वें नंबर पर काबिज भारतीय टीम ने 8 साल बाद टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। 1974 से शुरू हुए टूर्नामेंट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पहले ही सत्र में रहा था, तब ये टीम 4थे नंबर पर पहुंची थी। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं दिलनवाज पाशा से।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 अफ्रीकी देशों के दौरे के पहले पड़ाव में रवांडा पहुंचे हैं। इसके बाद वो युगांडा और दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, जहां वो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप 6 पूर्व खुफिया अधिकारियों की सुरक्षा मंजूरियों को वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। एक प्रेसवार्ता में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सारा हकाबी सैंडर्स ने इन 6 लोगों पर राष्ट्रपति ट्रंप के रूसी सरकार से रिश्तों पर आधारहीन दावे करने के आरोप लगाए हैं। ग्रीस से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक राजधानी एथेंस के पास जंगलों में लगी आग से मरने वालों की संख्या कम से कम 20 हो गई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने ट्विटर पर ट्रंप को ताना मारा है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया गुरप्रीत कौर ने। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समयानुसार, समय जानते हैं आप, शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन bbchindi.com है आपके साथ।